नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित AI संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा AI, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक है। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
UPI के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए UPI सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। PCI ने कहा है कि UPI देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी UPI उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
We have seen the comments.
हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के OPD में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर CBI द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, NTA के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, CBI का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, NTA के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, CBI ने दाखिल की चार्जशीट, NTA के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से CBI ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी CBI जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली NCR में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, FCRA पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। UPI लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।